حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ جھیم سا گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے اور نہ صدقہ. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس کی بیماری میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. آپ یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر کو پسند کر لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر آپ دیکھیے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا. یہ اللہ کے رسول کے عاشق تھے. آپ کے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھے رہتے اور جب بھی آپ کو ضرورت پیش آتی تو آپ کی ضرورت کو پورا کرتے. ایک دفعہ رات کے وقت جب یہ آپ کو وضو کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا، اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ربیعہ تو مانگ کے کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا، اور کچھ نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو. تعینی علی نفسی کا بھی کثرت سجود، کہ تم بھی جو ہے وہ کثرت سے سجدے کیا کرو اور اس طرح میری مدد کرو، یعنی نوافل کی کثرت کرو، دعا کرو، نوافل کی کثرت کرو. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو موقع ملا ہے، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ مانگ کے کیا مانگتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرے ٹھہرے ذرا مجھے مشورہ تو کرنے دیں، ذرا میں پوچھ لوں کہ کہاں کہاں کا گھر لینا ہے، امریکہ میں یا کینیڈا میں، کہاں کی سٹیزن شپ لینی ہے، کون سا زیور کا سیٹ لینا ہے، کیا لینا ہے. آپ دیکھیں کہ مانگا بھی تو کیا مانگا، اور آپ دیکھیں کہ جنت جو ساری نعمتوں کا جو ہے وہ نچوڑ اور مجموعہ ہے. کہا کہ اے اللہ کے نبی، جنت اور جنت میں بھی آپ کا ساتھ، یعنی صحابہ کو جنت بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تھی. تو جنت تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں اور میری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں. میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو صبر نہیں آتا، حتیٰ کہ آپ کو آ کر دیکھ لیتا ہوں، اور جب مجھے اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یاد آتی ہے تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت کے اعلیٰ مراتب میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور میں جب جنت میں داخل ہو بھی جاؤں گا تو آپ کو دیکھ نہ سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے. کون سی؟ یہی والی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورت النساء کی آیت نمبر 69. اس آیت سے صحابہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے جتنے کسی اور چیز سے خوش نہ ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں انہیں یہ خوشخبری ملی کہ جو ہے وہ انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور جو ہے وہ صالحین کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوگا. تو پیاری بہنوں، اصل چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، तो फिर ये सोहबत जो है वो मिल सकती है। और रसूल अल्लाह की रफाकत किसी रंग और नस्ल पर नहीं डिपेंड करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है? ये अतात पर डिपेंड करती है। और सोहबते सवाले जो है ना, बहुत जरूरी है कि सोहबते सवाले इख्तियार की जाए, नेक लोगों का साथ दुनिया में भी और फिर आखिरत में इख्तियार करने के लिए अपने अमलों का जायजा लेना चाहिए। अब आप देख लें कि अंबिया ने भी सोहबते सवाले की दुआ की है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के रब्बस समावाती वल अर्द अंता वली फी दुनिया वल आखिरा तवफनी मुस्लिम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। असल में सोहबते सवाले की मिसाल तो ऐसी है जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक साथी की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले की सी है और बद साथी की मिसाल भट्टी धूंकने वाले की सी है। बस कस्तूरी उठाने वाला या तो तुझे कस्तूरी दे देगा या तू उसे इससे खरीद लेगा। और अगर ये दोनों बातें ना होंगी तो कम से कम तू कस्तूरी की खुशबू ही को हासिल कर लेगा, और भट्टी धूंकने वाला या तेरे कपड़े जला देगा, और अगर ये ना होगा तो कम से कम तू उसकी बदबू तो जरूर ही महसूस करेगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। आपको जरूर इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आपके दोस्त कैसे हैं, इसी तरह आपके बच्चों के, आपके शौहर के। अगर शौहर है तो उसको ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरी जो बीवी है इसकी दोस्तियां और सहेलियां जो है वो कैसी हैं, दोस्तें कैसी हैं। इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होगा, बस तुम में से हर एक देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने एक मौके पर फरमाया, नेकों से मिलना एक खूबी है क्योंकि उनके बाद उनकी पैरवी करना जरूरी हो जाता है। फिर आप देखिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बड़ा ही खूबसूरत है। हजरत अता बिन अबी रबाह ये बड़े ही मुत्तकी थे और बनू उमैया का जमाना पाया इन्होंने, और हज के जो मनासिक थे ना, हज के की क्या है अहकामात, वो सिखाया करते थे, लोगों को हज की तालीम देते थे। और बनू उमैया के जमाने में जब हज के मौके पर मनादी होती थी तो ऐलान किया जाता था कि अता इब्ने अबी रबाह के सिवा और कोई हज के मसाइल के बारे में फतवा ना दे। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज के मौके पर एक हुजाम ने मुझे 5 मौकों पर जो है वो मनास के हज की तालीम दी, यानी एक बाल काटने वाला हुजाम जिसे आप नाई कहते हैं, तो उससे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 5 बातें हज की सीखी। कहते हैं, नंबर 1, जब मैं बाल तरशवाने के लिए मैं इसके पास गया, मैंने हजामत बनवाने की जो पैसे थे रकम उसको तय करना चाहा, तो उसने कहा कि हजरत इबादत में शर्त नहीं की जाती, यानी इसमें जो है इस तरह से तय नहीं होते पैसे, आप बैठ जाएं हजामत बन जाएगी। नंबर 2, मैं किबला रुख से जरा हटकर बैठा था, इसने मुझे किबला रुख बैठने का इशारा किया क्योंकि आपका रुख किबले की तरफ नहीं था, तो उसने कहा कि अपना रुख किबले की तरफ कर ले। तीसरी बात, कहते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि मैंने बाई जानिब से सर मुंडवाना चाहा, तो उसने कहा कि हजरत दाई जानिब फेरे, मैंने सर दाई जानिब फेर दिया और वो सर मुड़ने लगा कि दाई तरफ से आप सर बाल कटवाएं। चौथी बात, कहते हैं कि मैं खामोश बैठा था, इसने कहा आप तकबीर कहते जाए। और पांचवी बात, हजामत बनवाने के बाद जब मैं जाने लगा तो इसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने जवाब दिया कि अपनी कयामगाह पर, इसने कहा कि पहले 2 रकते पढ़ ले। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ख्याल आया कि एक नाई और एक हुज्जाम ऐसे मसाइल नहीं जान सकता, मैंने उससे पूछा कि तुमने जिन बातों की मुझे तालीम दी वो तुम्हें कहां से मालूम हुई, तो उसने कहा कि मैंने अता बिन अबी रबाह को ऐसा ही करते पाया था। ये है खूबसूरत बात। तो क्या करना चाहिए कि अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। एक दफा आप रसूल अल्लाह के पास कोई शख्स आया और शिकायत की, कहने लगा मेरा दिल बहुत सख्त है, आपने फरमाया उसे जिक्र और फिक्र की जगहों पर ले जाया करो। अब आप देखें कि मेरा इल्म काफी नहीं होता, मेरी सोहबत काफी हो जाती है। तो सोहबत सवाले जो है ना, ये ऐसी नेमत है एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर जाकर आपने खाना खाया, उन्होंने कुछ खाने के लिए पेश किया तो आपने उसको सोबते सवाले की दुआ दी। आपने फरमाया, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून वसल्लत अलैकुमुल मलाइका व अकलत तुआमाकुमुल अबरार। कितनी खूबसूरत दुआ आपने दी। अब आप देखें कि मेजबान के हक में दुआ में क्या कहा कि नेक लोग तेरे दस्तरखान पर खाना खाया करें। तो आप दावतें करती हैं, आप मिलती जुलती हैं, आती जाती हैं, तो आप खूब जरूर प्लानिंग किया करें कि नेक लोग जो है ना वो उनसे आपका मेल जोल हो और वो आपके यहाँ आए जाएं, आप उनके पास जाएं, क्योंकि सोबते सवाले से बहुत अच्छे जो है वो असरात पैदा होते हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का ऐलान कर रहे हैं, वहसुना उलाइका रफीका ज़ालिकल फज़लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। और इस सिलसिले में जो है वो सहाबा ने भी पूछा कि जो है वो यानी ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह के फजल के बगैर जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कि जब तक अल्लाह अपना फजल ना करे तो मैं जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वकफा बिल्लाही अलीमा, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही काफी है। फिर आप देखिए कि जो अगली आयात है इनमें जो है वो काफिरों के मुकाबले के लिए जो है वो तैयारी का हुक्म दिया गया है। फरमाया, या युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, खुजू हिज्रकुम, कि तुम जो है अपना हिज्र ले लो। हिज्र किसे कहते हैं? हा ज़ाल रा, इसके मानी होते हैं बचाव के। ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिज्र का, ये इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप देखें कि किसी चीज को जो है रोकने के लिए और साजो सामान के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो है इसके मानी जो है जैसे जाहिरी तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं कि मसलन खतरे और आफत से बचना, और फिर तरक्की करके ये लफ्ज जो है उन चीजों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो दुश्मन के हमले से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे असलहा, तलवार, तीर, नेजा। क्योंकि खुद बचना या उन चीजों का इस्तेमाल जिससे दुश्मन से बचा जाता है तो उसके लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इसके मानी क्या है? हा ज़ाल और रा के, यानी बचना या फिर बचने का सामान। तो कहा कि ए लोगों जो ईमान लाए हो तो तुम क्या करो, खुजू हिज्रकुम, कि तुम अपना हथियार जो है अपने हथियार ले लो, मुकाबले के लिए तुम तैयार रहो। फिर जो है मुकाबला करने की जो है वो दो तरीके बताए गए कि फन फिरू सुबातिन अविन फिरू जमिया। तो मुकाबला कैसे करना कि जैसा मौका हो फन फिरू, फिर तुम निकलो। फन फिरू जो है इसका रूट है नून फारा, और इसके मानी होते हैं निकलना, कूच करना। फरमाया कि फिर तुम निकलो, कूच करो, कैसे? सुबातिन, सुबात जो है सा बा ता इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं सुबात के छोटी जमात, फौजी दस्ता, और सुबात उनकी जमा है सबात। तो फरमाया कि जब तुम जो है वो दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलो तो छोटी सी जमात में, जैसे सवारों की जमात है, टुकड़ी है, दस्ता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि तुम निकलो। और फिर कैसे? अविन फरू, या तुम निकलो जमिया, एक लश्कर की शक्ल में। जमिया यानी एक बड़ी जमात, एक बड़ा लश्कर, एक बड़ी फौज। तो अब आप देख लें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बड़े बड़े लश्कर भी रवाना किए, खुद भी गए, और फिर आपने सरिये भी भेजे, छोटे छोटे जो लश्कर थे। तो यहाँ पे जो है वो दोनों तरह जो है वो तैयारी का हुक्म दिया जा रहा है, और जो अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कहा जा रहा है कि मौके की मुनासिबत से अलग अलग दस्तों की शक्ल में या फिर इकट्ठे होकर। वह इन्ना मिनकुम, फिर फरमाया, वह इन्ना मिनकुम, और बेशक तुम में से, लमल्ला युबत्ती अन्ना, जो कोई देर करता है, और इसका रूट है बा तोए हमजा, बा तोए हमजा, और इसके मानी होते हैं ढीला पड़ना, सुस्त पड़ना, पीछे रह जाना, दूसरों को सुस्त करना, सख्त हिम्मत करना। फरमाया, और हाँ अगर तुम में से कोई आदमी ऐसा है कि वो पीछे रह जाता है, सुस्त पड़ता है, या दूसरों को वो सुस्त करता है, कैसे सुस्त करता है या कैसे पीछे रहता है, यानी लड़ाई से जी चुराता है, खुद भी नहीं करना चाहता और दूसरों से ऐसी बातें करता है कि वो भी ना करे, अगर तुम लोगों में कोई ऐसा आदमी है कि जो खुद लड़ाई से जी चुराता है, फाइन असाबत को मुसीबतुन, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, काला कहता है कद अन्नम अल्लाहु अलैया, कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा इनाम किया है, अल्लाह ने मुझ पर जो है वो बड़ा फजल किया है, इज़लम अकुम माहुम शहीदा, कि मैं उनके साथ जो है वो मौजूद नहीं था। इसके मानी क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे अब मुसलमान जो है वो जंग पर गए हुए हैं और वहां पर जो है कोई भी नुकसान हो गया है, वो हार गए हैं, कोई भी ऐसी बात जो है वो पेश आ गई है, तो उस वक्त जो है ये खुश होता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं उनके साथ मौजूद नहीं था। वलाइन असाबकुम फजलु मिन अल्लाह ही, और अगर अल्लाह की तरफ से कोई फजल जो है वो तुम पर होता है, फजल से मुराद क्या है कि मुसलमान जीत जाते हैं, उनको कुछ माले गनीमत जो है वो मिल जाता है, तो उस वक्त जो है फिर वो शख्स क्या कहता है, लयकूलन्ना, तो जरूर ब जरूर ये कहेंगे, तअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहुम मवद्दतुन, ये जो है ना लयकूलन्ना, यहां से लेकर मवद्दत, उनको आप जो है जरा सर्कल करें, ब्रैकेट में करें और उसको समझें कि अब मुसलमानों को जो है क्या हुआ कि मुसलमानों पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की और उनको कोई उनको फतह हो गई, माले गनीमत जो है वो उनके हाथ आ गया, तो उस वक्त जो है ये कहता है कि गोया तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक था ही नहीं। अब आप देखें कि यहाँ पे इस सिलसिले में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि चूंकि मुसलमानों को जो है वो माले गनीमत मिल गया या फतह मिली, तो इतना ये खुद गर्ज है कि मुसलमानों की फतह पे खुश नहीं होता, क्योंकि ये मुनाफिक है ना, तो मुसलमानों की फतह पे खुश नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि अफसोस करता है, अफसोस करता है, और मुसलमानों की फतह पर खुश होने की बजाय ये कहता है कि काश जो है वो मैं भी, यानी मैं खुद मौजूद होता तो मुझे फायदा मिलता। तो मुसलमान मुसलमानों की फतह पे या माले गनीमत पर खुश नहीं होता क्योंकि वो खुद मौजूद नहीं है ना, तो उसका अंदाज कैसा है कि मैं खुद होता, यानी मैं जिहाद पे जाता, मुझे मालो दौलत मिलता, तो ये उसकी खुद गर्जी की अलामत है। तो उसका ये कहना ला यकूलन्ना, वो जरूर ब जरूर कहेंगे, कालम तकुम बैनकुम,
अच्छा
गोया के तुम्हारे और इसके दरमियान जो है वो मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं, यानी मुसलमानों की फतह से और मुसलमानों को माले गनीमत मिलने पर उनको भी खुश होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये मुनाफिक है तो खुश होने की बजाय ये कहता है कि जैसे इसका और मुसलमानों का आपस में कोई ताल्लुक जो है वो है ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों की कामयाबी पर ये खुश नहीं होता। या लैतनी कुंतु माहुम, कहता कि काश मैं भी इनके साथ होता, फाफूजू, या लैतनी कुंतु माहुम, काश मैं इनके साथ होता, फाफूजा फौजन असीमा, तो फिर बड़ा काम बन जाता, तो बड़ी पाता मैं कामयाबी, तो मुझे भी जो है वो क्या होती कि कामयाबी मुफ्त में मिलती, मुझे माले गनीमत मिलता। अब फिर जो है अब यहाँ पर जो है वो मकसद बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो माले गनीमत मिलने पर जो है वो जंग में शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जंग का मकसद क्या है, फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, माले गनीमत नहीं बल्कि बस चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़े, तो ऐसे लोगों को पता हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए, अल्लज़ीना यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर देते हैं, तो अल्लाह की राह में लड़ना दुनिया तलब लोगों का काम है ही नहीं। बल्कि ऐसे लोगों का काम है जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। दुनिया में जो है वो क्या चाहते हैं कि रब को राजी करें। तो कहा कि फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, बस चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़े ऐसे लोग। कैसे लोग? वो लोग अल्लज़ीना यशरून अल हयात दुनिया, वो लोग जो के जो है वो फरोख्त करते हैं आखरत को, यानी आखरत को बेच देते हैं और खरीदते हैं किसको? दुनिया की जिंदगी को। उन लोगों को जो आखरत के बदले दुनिया की जिंदगी को जो है वो फरोख्त कर दें। और इसका जो है वो इस तरह भी तर्जुमा किया जाता है, वो लोग जो बेचते हैं कि दुनिया की जिंदगी आखरत के बदले में। तो दुनिया, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, फिर उनके लिए दुनिया की जिंदगी की कोई भी कदरों कीमत जो है वो नहीं होती। और जो आखरत के बदले में दुनिया की जिंदगी को जो है अहमियत देते हैं, वो लोग जो है बड़े ही जो है वो नकदरे हैं कि गिनती के चंद दिरहमों पर छोटी सी दुनिया के लिए जो है वो आखरत को बेच देते हैं। वो दुनिया की जिंदगी पर आखरत को क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में लोगों को लड़ना चाहिए, माल के लिए नहीं और फतह के झंडे गाड़ने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का दीन फैलाने के लिए। फिर फरमाया वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा फयुक्तल, और मारा जाएगा, और यगलिब या गालिब रहेगा, फसौफ नूतीहि अजरन अजीमा, तो जरूर हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो बताए जा रहे हैं जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकलने की तीन बातें, के लड़ना, यहाँ तक के शहीद हो जाना, या फिर ये के गाजी बनकर लौटना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हर एक को उसके अमलों के मुताबिक जो है हम जजा देंगे। फसौफ नूतीहि अजरन अजीमा, तो हम उसे जो है वो क्या करेंगे? जरूर ब जरूर जो है वो अजर अजीम जो है वो अता करेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहां से हमें फिर क्या बात पता चलती है कि अल्लाह के रास्ते में जो निकलना है तो इसका कितना जो है वो अजर है, कितना मकाम है कि अल्लाह उसको बड़ा अजर देगा। फिर आयत नंबर जो 75 है, इसमें वो जो कमजोर मुसलमान थे जो मक्का के अंदर जो थे वो मौजूद थे, और वहां से वो निकलकर हिजरत भी नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन कमजोर, मजबूर, बेबस मर्द, औरतें और बच्चे जो हैं उनकी तरफ इशारा किया है कि ना हिजरत कर सकते हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अपने आप को जो है काफरों के जुल्म सितम से बचा भी नहीं सकते, और दुआएं करते रहते हैं। वमा लकुम, तुम्हें क्या हुआ है? वमा लकुम अंदाज है काम पर उभारने और शौक दिलाने के लिए। वमा लकुम, और क्या हो गया है तुम्हें? ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते। वल मुस्तदफीना मिन अर्रिजाल वन निसाई, वल मुस्तदफीना इसके मानी है और कमजोर। मुस्तदफीना जो है दुआद ऐन फा से है, और यानी मुराद है यहाँ पर बेबस, कमजोर, जो कमजोर है मिन अर्रिजाल मर्दों में से, वन निसाई औरतों में से, वल विल्दानी और बच्चों में से। अल्लाह जीना, ये कमजोर जो हैं, ये कहते हैं क्या? यकूलूना, वो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। पहली बात वो क्या कहते हैं? अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, वो कहते हैं खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं। और हाज़िहिल क़रिया जो है, क़रिया से मुराद जो है वो मक्का की बस्ती है। और दूसरी तरफ जो है इसके रहने वाले जो हैं वो जालिम हैं से मुराद क्या है? कि जो मक्का के लोग थे वो इन पर जुल्म और सितम जो थे वो कर रहे थे, इनको तंग कर रहे थे, ईमान इनका जुर्म था और उसके नतीजे में इनको सताते थे, मारते थे, पीटते थे। दूसरी बात वो कहते हैं वजअल लना मिन लदुनका वलिया, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार जो है वो पैदा कर दे। अब वो क्या कहते हैं? मिन लदुनका। अब इसको आप सर्कल कर ले कि जाहिरी तौर पर हालात ऐसे हैं कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह ताला अपनी कुदरत और अनायत से कोई राह खोल दे, तू हम पर जो है वो करम कर दे। अब आप देख लें कि अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि कितने ही इंसान जो है परेशान क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह पर ईमान कैसा होता है कि वज़अल्लना मिल लदुनका वलिया, कि अल्लाह ही से जो है वो सारा सहारा होता है और अल्लाह ही जो है उससे मदद तलब की जाती है कि अल्लाह तू जो है हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। वज़अल्लना मिल लदुनका नसीरा, तो वली और नसीर, वली दोस्त को कहते हैं और नसीर नुसरत से है मदद करने वाला। तो अल्लाह ही से जो है वो वली भी मांगते हैं, हामी भी मांगते हैं और जो है वो मददगार मांगते हैं। तो अब यहां पर जो है एक तरफ ये बताया जा रहा है कि जो मक्का के अंदर लोग रहते थे वो ईमान ला चुके थे, बेबस थे, मजबूर थे, उनका ईमान कैसा था कि मुसलसल अल्लाह से लॉ लगाए हुए थे, कि अल्लाह से कह रहे थे कि बस तू हम पे रहम कर, तू हमारी मदद कर, कोई वली और नुसरत दे दे। दूसरी तरफ जो आम मुसलमान हैं उन्हें जो है वो तहरीक दिलाई जा रही है कि इन बेबस मुसलमानों की जो है वो मदद करें और इनको जो है वो जो मुश्किल है, जो मुश्किलात में है उनसे निकाल लाएं। अच्छा, आज के दौर में भी जैसे फिलिस्तीन है, कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, इराक या कहीं भी मुसलमान जो हैं मजलूम हैं और जो है वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तो बाकी मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी मदद करें। और अगर वो मदद नहीं करते तो फिर क्या है कि यहाँ पर भी आप देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में इनकी मदद क्यों नहीं करते। तो ऐसे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी फिर मदद करें। फिर आयत नंबर 76 में बताया गया अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फी सबीलिल्लाही, वो लोग जो ईमान लाए हैं और वो नंबर दो वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। तो असल चीज क्या है कि ईमान का रास्ता इख्तियार करने के बाद अल्लाह के रास्ते में लड़ना। बाज लोग लड़ते हैं कि जो है वो सिकंदर आजम बन जाए, या ये कि फतेह के झंडे गाड़े, या ये कि तेल पर कब्जा करना, या ये के जो है वो सुपर ताकत बनना। तो असल में सुपर ताकत तो अल्लाह की जात है। तो लड़ना किस लिए है? अल्लाह के रास्ते में, ताकि अल्लाह का दीन जो है वो बड़े फैले फूले और कुफर की बजाय इस्लाम जो है वो नाफिज हो। वो ये तो है मोमिन, ईमान वाले, ईमान लाने वाले अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। वल्लज़ीना कफरू, और जिन्होंने कुफर किया, युकातिलूना फी सबीलित तागूती, वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। फकातिलू औलिया अश्शैतान, बस शैतानों के साथियों से लड़ो। इन्न कैदा शैतान कान ज़ईफा, और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत कमजोर हैं। अब आप देखें कि यहां पर जो है वो दो बातें बताई जा रही हैं कि एक तरफ जो ईमान लाने वाले लोग हैं वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, दूसरी तरफ जो कुफर करने वाले हैं वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जो शैतान के दोस्त है ना इनसे लड़ाई करो, और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत कमजोर हैं। शैतान की चालें जो हैं वो क्यों कमजोर होती हैं? असल बात यह है कि शैतान की तदबीर को इसलिए कमजोर कहा गया है कि जब आदमी जो है जब उसके अंदर ईमान नहीं होता और वो अल्लाह के रास्ते में लड़ता नहीं है, फिर शैतान की तदबीर जो है मजबूत हो जाती है। जब आदमी के पास क्या होता है? अल्लज़ीना आमनू, ईमान होता है। नंबर दो, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। तो उसकी तदबीर जो है फिर क्या होता है, उस मुसलमान की तदबीर मजबूत होती है और शैतान की तदबीर कमजोर हो जाती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब तुम शैतान को देखो तो बगैर किसी खौफ के इस पर हमला करो। फिर आपने यही तिलावत की आयत इन्ना कैद शैतानी काना दईफा, और आप देखें कि ये जो शैतान पर हमला करना है तो ये इबलीस और जो शैतान की ट्रिक्स हैं, उसकी चालें, उसकी साजिशें जो है ना, उससे जो है वो बाखबर रहना है। और शैतान जो है हमारे जिस्म में खून की तरह जो है, हमारी रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, और जैसे हमारा अपना नफ्स भी शैतान हो सकता है अगर वो हमें जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात के खिलाफ अमल करने को कहता है। और हमें फिर क्या करना है कि उसकी चालों को जो है वो कमजोर बनाना है। अलम तरा इल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ्फू अय्दियकुम, अब यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि तुमने उन लोगों को भी देखा अलम तरा, क्या तुमने देखा? इल्लज़ीना, उन लोगों को, लहम कुफू अइदियाकुम, कि जिन्हें हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो। कुफू, कफ जो है ये हथेली को कहते हैं। आप उर्दू में भी कहती हैं कि मेरी कमीज जो है उसका जो बाजू है ये आप कफ तक कर दें, तो कफ का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है हाथ के लिए, और इसी से ये लफ्ज जो है ये रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसी को भी मना करना हो, किसी को भी रोकना हो, तो हथेली जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो फरमाया कि जिनको हुक्म हुआ था कि अपने हाथों को रोके रखो, कुफू अइदिया को, अपने हाथों को रोके रखो, वाकी मुसलाता, और नमाज कायम करो, व आतु जकाता, और देते रहो जकात। अब ये कौन लोग थे? मक्का में हिजरत करने से पहले जब काफिर मुसलमानों को बहुत सताते थे तो मुसलमान आपकी खिदमत में हाजिर होकर शिकायत करते और इजाजत मांगते कि हमें जंग की इजाजत दी जाए ताकि उनसे जुल्म का बदला लिया जाए। आप मुसलमानों को लड़ाई से रोकते और कहते कि मुझे जंग की इजाजत नहीं है, बल्कि सबर करो, दरगुजर करो, नमाज और जकात जो है वो कायम करो। तो यहाँ पे उसी चीज की तरफ इशारा है कि क्या तुमने नहीं देखा इन लोगों को जिनको हुक्म ये हुआ था कि अपने हाथ रोके रखे, यानी जंग नहीं करें, वाकीमुस सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करें और ज़कात दें। मतलब क्या है? अपनी तरबियत पर तवज्जो दें, अल्लाह की अतात पर अपने नफ्स को जो है वो राजी करें। माल खर्च करना और अपने जिस्म को अल्लाह की अतात पर जो है वो राजी करना, ये है असल चीज। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, और जब इन्हें लड़ाई का हुक्म दे दिया गया, यानी इन पर जंग करना फर्ज कर दिया गया, कब? जब मुसलमान मदीना आ गए हिजरत करके, इस्लामिक स्टेट उनको मयसर हो गई, तो उनको अब जंग का हुक्म मिला। इज़ा फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक जमात, यख्शाउन अन्नासा, डरती है लोगों से, जैसा कि डरना चाहिए, का खशियतिल्लाही, जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए, और अशद्दा खशिया, या इससे भी ज्यादा डर। तो अब आप देखें कि उस वक्त मुसलमान जो थे क्या कहते थे कि हमें जंग की इजाजत दी जाए, तो कहा गया कि नहीं, अभी जंग नहीं करें, तरबियत पर तवज्जो दें। तो जब उनको जंग की इजाजत मिल गई तो अब क्या हुआ कि वो जो कमजोर ईमान वाले थे जो है वो अब डरने लगे। तो कहा कि अजीब बात है कि अब एक जमात डरने लगी, और लोगों से ऐसे डरने लगी जैसे कि अल्लाह का डर होना चाहिए, या इससे भी ज्यादा डर। फकालू, और कहने लगे, रब्बना लिमा कतबता अलैनल किताल, है हमारे रब, लिमा, क्यों कर कतबना अलैनल किताल, हम पर क्यों जंग फर्ज कर दी, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, और क्यों ना तूने इसको छोड़े रखा एक और थोड़ी मुद्दत। यानी कि वो कहने लगे कि क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी। लौला अखरतना, अखरतना का मतलब होता है ताखीर करना, कि क्यों ना ताखीर की, यानी छोड़ दिया हमारे लिए इसको, इला अजलिन करीब, एक करीबी मुद्दत तक। तो बाज लोग ये कहते हैं कि अजलिन करीब से मुराद मौत है, बाज कहते हैं कि फर्ज जिहाद की मुद्दत को और क्यों ना मौखर कर दिया। कुल मताउ दुनिया कलील, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं इनसे, कहो दुनिया की सारी जिंदगी क्या है? कलील है, बहुत थोड़ी है। यानी किसी को पूरी दुनिया भी मिल जाए, पूरी जिंदगी भी मिल जाए, वो हमेशा हमेशा भी दुनिया में रहे, तो दुनिया क्या है? मताउन कलील है, बहुत ही थोड़ी है, क्योंकि दुनिया की नेमतें भी कलील हैं और दुनिया का वक्त भी बहुत ही मुख्तसिर है, और आखिरत जो है वो दुनिया के मुकाबले में कैसी है? बहुत ही जो है वो तवील भी है और हमेशा रहने वाली है। बल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत जो है वो ज्यादा बेहतर है। खैरुन इस्म तफजील है, एक ऐसे शख्स के लिए जो के मुत्तकी हो। वला तुज़लमूना फतीला, और तुम पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। फतील आप पीछे भी पढ़ चुकी हैं, फातालाम, खजूर की गुठली में हल्का सा जो धागा है ना, उसको फतीला कहते हैं। पीछे आपने नकीरा भी पढ़ा था, खजूर की गुठली में जो उसके अंदर या उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है, उसको भी कहा जाता है नकीरा। तो फतीला, नकीरा, हकीर चीज के लिए, मामूली थोड़ी सी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ऐनमा तकूनू, जहां कहीं तुम होगे, युदरिक कुमुल मौतू, आके रहेगी तुमको मौत। और यहां पर जो है युदरिक कुम का लफ्ज जो है ये अहम है, इसका रूट है, ये लफ्ज जो है आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट है दाल रा काफ, दाल रा काफ, और इसके मानी होते हैं इदराक करना, पा लेना, फरमाया कि तुम जहां कहीं भी होगे तो मौत जो है ना वो तुम्हें पा लेगी, वो तुम्हारा इदराक जो है वो कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम जो है मौत से किसी तरह जो है वो छुप सको। तो दरा का मतलब होता है इदराक होना, किसी चीज की कैफियत को महसूस करना। अइनमा तकूनू, जहां कहीं तुम होगे, युद्रिक कोमुल मौतू, मौत तुम्हें आकर रहेगी, पाकर रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, हाँ तुम कैसी मजबूत इमारतों में हो। बुरूज जो है ये बुर्ज की जमा है, और बुर्ज का लफ्ज इस्तेमाल होता है मजबूती के लिए। जैसे बुर्ज इब्तदाई जमाने में किसी नुमाया और वाजे चीज के लिए भी इस्तेमाल होता था, जैसे दूर से बुर्ज नजर आता है ना, नुमाया होता है, तो बुलंद इमारतें कलों के लिए लफ्ज मारूफ हो गया। और मुशय्यदा, मुशय्यदा का जो लफ्ज है, मुशय्यदा, इसका रूट है शीन या दाल, और इसके मानी होते हैं मजबूत, बुलंद। और यहां पे चूंकि ये बुरूज की सिफत है तो बुलंदी और इस्तेहकाम दोनों इसके मानी हैं। फरमाया कि तुम कितने ही मजबूत और बुलंद इमारतों के अंदर क्यों ना हो, जैसे कले में जाकर तुम क्यों ना छुप जाओ, जब मौत का वक्त होगा तो मौत तुम्हें आकर जो है वो पकड़ लेगी। वइन तुसिबुम हसनतुन, और अगर इन्हें कोई फायदा पहुंचता है कि नहीं, मुनाफिकीन को यकूलू, वो कहते हैं हाजही मिन इंदल्लाही, ये अल्लाह की तरफ से है। वइन तुसिबुम सय्यतुन, और अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, यकूलू, वो कहते हैं हाजही मिन इंदिक, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी बदौलत है। अब यहां पर जो है मुनाफिकीन की एक और अलामत जो है वो बताई जा रही है कि फतह को वो अल्लाह का फजल करार देते और भूल जाते कि अल्लाह ने इन पर ये फजल नबी ही के जरिए किया है, और जब उन्हें कभी शिकस्त होती तो सारा इल्जाम रसूल अल्लाह पर डाल देते, खुद बरी और जिम्मा हो जाते, हालांकि उनकी अपनी गलतियों और कमजोरियों से उनको शिकस्त होती। कुल कुल मिन इंदिल्लाह, कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। कमाल हा उला इल कौमी ला ये कैदू ना यफकहू ना हदीसा, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। मा असाबा का मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, ए इंसान तुझे जो भी हसना भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और हसना के मानी है नेमत के, तो जो भी नेमत इंसान को मुयसर आती है वो अल्लाह के फजल से होती है। ममा असवाबा का मिन सय्यातिन फमिन नफसिक, और अगर तुम्हें जो है कोई मुसीबत पहुंचती है, सय्या जो है इसके मानी क्या है, मुसीबत के, और जब कोई तुम्हें मुसीबत आती है, फमिन नफसिक, तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से, तुम्हारे कसब की वजह से, तुम्हारे अमलों की वजह से वो मुसीबत तुम पर आती है। वह मैं अब आप देख लें कि यहां पर जो है वो हसना और सैया जो है, ये आप इसके बारे में बताया जा रहा है कि लोग जो है वो क्या करते हैं कि मौत के खौफ से डर कर छुपते हैं, डरते हैं, भागते हैं, तो कहा कि तुम्हारी तदबीरें जो हैं उनके जरिए तुम मौत से बच नहीं सकते। फिर दूसरी तरफ जो मुनाफिक है वो क्या करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में हक और बातिल की कश्मकश में नरम और गर्म हालात तो पेश आते रहते हैं, तो वो अच्छे हालात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते और बुरे हालात को रसूल अल्लाह की तरफ। अब यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात बता दी कि ऐसा नहीं है कि जो सैया या बुरे हालात आते हैं या शिकस्त होती है या नाकामी होती है तो रसूल की वजह से होती है। कहा वह अरसलना का लिन्नासी रसूला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। रसूल का हर काम अल्लाह की रहनुमाई में होता है, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का एम्बेसिडर, तो अल्लाह जो है वो उसकी रहनुमाई जब करता है तो कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करता। वकफा बिल्लाही शहीदा, और इस पर अल्लाह की गवाही जो है वो काफी है। बड़ी खूबसूरत बात है जो इस वक्त जो है हमारे सामने आती है कि दरअसल जो है इंसान जो है वो कभी भी किसी भी गलती या बुराई को कबूल नहीं करता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी शर है, बुराइयां हैं, जो भी सैया है, वो इंसान का अपना कसब है, उसके अपने अमाल की वजह से जो है वो होता है। जब उसके अंदर कमजोरियां पाई जाती हैं, वो बेसब्री करता है और तो क्या होता है कि फिर वो जो है वो उसको शिकस्त होती है, नाकामी होती है। तो जहां तक रसूल है तो रसूल तो अल्लाह ने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिन्ना सारे इंसानों के लिए, वकफा बिल्लाही शहीदा, और इस पर अल्लाह की गवाही काफी है। आप सोच लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह जो है वो इस बात पर गवाही दे रहे हैं। इसके बाद फरमाया वकफा बिल्लाही शहीदा के बाद मैं युते रसूला फकद अपा अल्लाह, ये बड़ी जबरदस्त आयत है कि इसमें कहा कि जिसने रसूल की अतात की, दर हकीकत उसने अल्लाह की अतात की। अभी तक आप क्या पढ़ती थी, पहले अल्लाह की अतात फिर रसूल की अतात आप पढ़ते थे ना, और आप देखें कि यहाँ पे इसका अंदाज बिल्कुल ही तब्दील हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल की अतात को अल्लाह की अतात करार दिया, और रसूल की नाफरमानी दरअसल अल्लाह की नाफरमानी है। अब कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि हम तो कुरान पर अमल करते हैं, अल्लाह की अतात करते हैं, और जो है वो रसूल की अतात की जरूरत नहीं है। तो फरमाया जिसने रसूल की अतात की, दर हकीकत उसने अल्लाह की अतात की। फमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें इन लोगों पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजा है। फमन तवल्ला, जो मुंह मोड़ जाए, फमा अरसलनाका, तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हमने भेजा आपको अलैहिम इन पर हफीजा, पासबान, हिफाजत दान। सूरत गाशिया में भी है ना, فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر। इससे ये बात पता चलती है कि जो खुद मुसलमान ना होना चाहे, खुद ईमान ना लाना चाहे, तो जबरदस्ती उसको जो है वो मोमिन नहीं बनाया जा सकता, जबरदस्ती उसको मुसलमान जो है वो नहीं बनाया जा सकता। फिर इसके बाद फरमाया وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, अब मुनाफिक कैसे थे, दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करने वाले। अब मुनाफिक जो है ना, जो डबल फेस रखने वाले, जिनकी जिंदगी में कंट्राडिक्शन है, उस उनकी मुजम्मत की जा रही है। وَيَقُولُونَ, और वो कहते हैं طَاعَةٌ, हम तो मुती हैं। فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, और जब आपके पास से बाहर निकलते हैं, बरजा का मतलब होता है अलग होना, दूर होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से जब वो बाहर निकलते थे, बैयता, बैयता होता है रात गुजारना, मशवरा करना, यानी रात के वक्त जो है वो मशवरा करना। तो बैयता, तो वो रात को मशवरे करते हैं, कौन, एक मुनाफिकीन का ग्रोह, ताइफतुन ग्रोह, मिनहुम इनमें से, गैर अल्लज़ी तकूल, गैर अल्लज़ी, खिलाफ इसके जो तकूल आप कहते हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सुन बैठते, आपकी बातें सुनते, कुरान की आयात को सुनते, फिर आपकी जब महफिल से निकल जाते, बरजू मिन इंदिका, आपके पास से जब उठकर चले जाते, बैयता, रात के वक्त मशवरे करते, आपसे जो कुछ सुना होता था ना उसके खिलाफ मशवरे करते, बातें करते, ताइफतु मिनहुम, उनमें से गुरु, गैर अल्लज़ी तकूल, उसके अलावा जो थे वो कहते जो के आप कहते थे, तो आपकी बातों के खिलाफ मशवरे करते। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं और अल्लाह इनके बाहमी मशवरे लिखता जाता है। फआरिद अनहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी परवाह ना कीजिए, इनसे एराज कीजिए। वतवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखिए। वकफा बिल्लाहि वकीला, वही भरोसे के लिए काफी है। यहाँ पे ये बात पता चलती है कि जो है वो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दीन का काम करते थे तो मुनाफिक आपकी महफिल से निकलकर फिर तरह तरह की बातें करते, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऐसी बातें, ऐसे जो है वो इतराजात करते कि जिससे लोगों को दीन के बारे में शक पैदा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि आपको इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनको इनसे जो है ना क्या करें आप, इनकी परवाह किए बगैर आप अपना दीन का रिसालत का काम करते जाएं, अल्लाह पर तवक्कुल करें और अल्लाह ही वकालत के लिए काफी है। तो आज के दौर में भी जब आप दीन का काम करेंगी, आप जब भी अच्छा काम करेंगी तो लोग तो बातें करेंगे, तो इससे परेशान होने की बजाय कि लोग क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही तरीका बताया, फारिद अनहुम, इनसे एराज करके, इनकी परवाह किए बगैर, व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो, व कफा बिल्लाही वकीला, अल्लाह भरोसे के लिए काफी है। फिर आप देखिए कि आयत 82 में जो है बताया जा रहा है कि ये जो भी इतराजात हैं या इख्तलाफात हैं तो उनका हल कैसे मिल सकता है, उनका हल कुरान के अंदर है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान में तदब्बर नहीं करते। ये तदब्बरून का लफ्ज बहुत ही अहम है, इसका रूट है दाल बा रा, और दुबर का लफ्ज इस्तेमाल होता है पीठ को कहते हैं, और तदब्बर का मतलब होता है कि किसी भी मामला जो है, यानी जब किसी चीज पर तदब्बर किया जाता है तो किसी मामले के अंजाम पर गौर करते हुए, नजर करते हुए जो है फिर तदब्बर करना। होता है ना कि किसी चीज का एक जाहिरी पहलू होता है, जैसे सामने कोई चीज नजर आ रही है, दूसरा जैसे दुबर पीठ को कहते हैं तो एक उस मामले का जो है एक बातनी पहलू होता है, उसका अंजाम। तो कहा कि एक तो है ना कुरान की आयात जो सामने नजर आ रही है, दूसरा ये कि इन कुरान की आयात के अंदर पैगाम क्या है, ये क्या पैगाम देती है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान पर तदब्बर नहीं करते, क्या ये कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते। लौकान मिन इंदे गैरिल्लाही लवजदू फी इख्तलाफन कसीरा, और अगर ये कुरान जो है अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता, वलौकान मिन इंदे गैरिल्लाही, अगर कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से नाजिल होता, लवजदू फी ही, तो लोग जरूर बजरूर इसमें पाते, इख्तलाफन कसीरा, बहुत सी मुख्तलिफ बातें इसमें पाई जाती। अब यहां पर जो है बताई जा रही है बात, जिसको आप नोट कर लें कि लोगों के अंदर मुनाफ़क़त क्यों पाई जाती है, डबल फेस, उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि लोग कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते, और अगर वो कुरान पर गौर व फिक्र करते कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह वही नाजिल करता है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुरान की आयात पर गौर व फिक्र करते तो फिर इनके अंदर से निफाक बिल्कुल खत्म हो जाता, क्योंकि कुरान के अंदर अव्वल से लेकर आखिर तक यकरंगी है, एक ही मजमून है, बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको जो है वो पेश किया गया है। और अगर ये जो मुनाफिक हैं कुरान पर गौर करते तो इनके अंदर से भी जो है वो दुरंगी खत्म होकर यकरंगी पैदा हो जाती। तो किसी इंसान का नहीं है कलाम, अगर इंसान का कलाम होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ मौके पर, मुख्तलिफ मजामीन पर जो है अल्लाह ताला ने एक अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में और दलाइल में जो है वो बात की है, अंदर एक ही रूह जो है वो कार फरमा नजर आती है। वाइजा जाअहुम अम्रुम मिनल अमनी अविल खौफी, अब यहाँ पर जो है मुनाफ़क़त की एक और अलामत बताई जा रही है कि अफवाहें फैलाते हैं, बगैर तहकीक के बातों को फैलाते हैं। वाइजा जाअहुम अम्रुन, फिर फरमाया कि और जब पहुंचती है इनके पास कोई बात, मिनल अमनी अमन वाली, अविल खौफी या खौफ वाली, ये लोग जहां कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर को सुन लेते हैं, अजाऊ बही, तो फिर उसको फैला देते हैं। अजाऊ जो है इसके मानी है खूब फैलाना, तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि वो जो खबर है उसको जो है वो बुरी तरह से जो है ना फैला देते हैं। इसका रूट है अजाऊ का जाल या आयन, और इसके मानी है चर्चा करना, फैलाना। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी बात जब इन तक पहुंचती है तो उसको जो है फिर फैलाते हैं। अच्छा, अब होना क्या चाहिए था, उनको बात की तहकीक करनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात को बस फैला देते हैं। वलौ रद्दूहु इला रसूली, हालांकि अगर वो उसको रसूल की तरफ लौटा देते, वइला उलिल अमरी, ये अपनी जमात के जिम्मेदारान की तरफ, उलुल अमर की तरफ, मिनहुम जो उनमें से थे, यानी अपनी जमात के जो उलुल अमर थे उनकी तरफ पहुंचाते। लअलिमहुल्लजीना, लअलिमहुल्लजीना इसके माने ये हैं कि वो लोग जो कि लअलिमा जो जान लेते, अल्लाजीना वो लोग। अब ये कि इस आयत के बारे में ये बात जो है वो आती है कि ये खबर मशहूर हो गई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को जो है वो तलाक दे दी है। तो जब ये खबर मशहूर हुई तो मस्जिद नबवी के अंदर भी और बाहर भी लोग जो थे ये बातें करने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने भी जब ये खबर सुनी तो आप जो थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दी? आपने फरमाया नहीं। फिर आपने तहकीक की जब हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने तो बाहर मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी और तुम जो ये बात कह रहे हो ये गलत है। तो कहते हैं कि इस पर ये आयत नाजिल हुई, अमनी अविल खौफी अजाऊ बही, ये लोग जब कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुनते हैं तो उसे फैला देते हैं, हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदारान असाब तक पहुंचाए तो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए। वलौ रद्दूहू इला रसूली व इला उलिल अमरी मिनहुम, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते या अपनी जमात के जो जिम्मेदार लोग थे उनको बताते। अलेमा हूँ जब वो उसको जान लेते जो जिम्मेदार थे अल्लाजीना वो लोग, यस्तंबितू नहू मिनहुम, तो वो इसमें से इस्तंबात करते। इस्तंबात किसे कहते हैं? इसका जो रूट है यस्तंबितू नहू का, इसका रूट है नून बा तोए और इसके मानी होते हैं, इसके मानी होते हैं कुआं खोद कर इससे पानी निकालना, किसी पोशीदा चीज को जाहिर करना, कुएं की तह से पानी निकालने को इस्तंबात कहते हैं, क्योंकि कुआं खोदने में जो पानी पहली मरतबा निकलता है उसको माए मुस्तंबत कहते हैं। इसी से ये लफ्ज जो इस्तंबात का है ये इस्तेमाल होता है किसी बात की तह तक पहुंचकर इसकी सही हकीकत मालूम करना। तो फरमाया जो अहले इल्म होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी बात की सही तह तक पहुंच सके, सही नतीजा जो है वो अखज कर सके। अच्छा, यहां से एक अहम अमल का असूल मिलता है और वो ये कि सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाज लोगों के अंदर जो है ये बीमारी पाई जाती है कि जैसे ऐसे ही वो किसी की लड़ाई हो जाए तो कहते हैं कि वो हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे तलाक हो गई है, तो सुनी सुनाई बात को जो है ना वो आगे ही आगे है जो है वो फैला देते हैं और औरतों के अंदर ये बीमारी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर जो है वो इससे मना किया जा रहा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे, इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो क्या अमल का असूल निकलता है कि जब तक किसी बात की तहकीक ना हो, सही बात पता ना हो, तो बगैर तहकीक के उसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और ये मुनाफ्त होती है, मुनाफ्त की एक अलामत है कि अफवाहें पैदा करना, अफवाहें फैलाना, और अफवाहें जो हैं वो जमाती जिंदगी में भी और इंफरादी जिंदगी में बड़े खतरनाक नतायज जो हैं वो पैदा कर सकती हैं। इससे डरना भी चाहिए और इससे जो है वो बचना भी चाहिए, जैसे रूमर्स जो हैं इससे जो है वो बचना भी चाहिए। फिर दूसरी यहाँ बात जो है यहाँ पर हमारे सामने जो अमल के लिए आती है वो ये है कि कोई भी बात जब हो तो अहले इल्म तक उसको पहुंचाया जाए, और फिर अहले इल्म जो है उसमें से बता सकते हैं अखज करके कि क्या असल बात फिर क्या है। तो अहले इल्म का यहाँ पे जो है खास एक मकाम जो है वो पता चलता है कि जो उलुल अमर हैं, जो अहले इल्म हैं, इनका क्या दर्जा है। वैला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहुल लजीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर जो है तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और उसकी रहमत ना होती, उसका फजल ना होता, लत्ताबात तुम शैताना इल्ला कलीला, लत्ताबात तुम जरूर जो है वो पीछे लग जाते, पैरवी करते, अशैताना शैतान की, इल्ला कलीला मगर थोड़े, यानी थोड़े बचते और ज्यादा लोग जो थे वो शैतान की पैरवी जो है उसकी पैरवी जो थे वो करने लगते। तो यहां पर भी ये बात बताई जा रही है कि अफवाहें जो है मुसलमानों के अंदर गलत किस्म का जो है वो गलत किस्म के एहसास पैदा कर देती हैं। बाजू का चालाक दुश्मन जो है किस तरह मुसलमानों से फायदा उठाता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, या गैर जिम्मेदाराना अफवाहें फैलाने के नतायज कितने शदीद होते हैं। तो इससे फिर ये बात पता चलती है कि हम सबको भी अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए और बगैर सोचे समझे जो है बात को जो है वो आगे नहीं फैलाना चाहिए। और अगर कभी कोई ऐसा ऐसी बात सुनने में आए तो ऐसे मौके पर सही पॉलिसी ये है कि वो लोग जो मामलात की गहरी सूझबूझ रखते हैं, जो समझदार होते हैं, तो उन तक जो है वो बात पहुंचाई जाए। तो यहाँ पे ये जैसे मसलन फलां ने फलां पर हमला कर दिया, तो इस तरह जो है वो बाजू का जो है एक डर और खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है। तो जब लोग कुरान पर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, फिर अपनी वो जबान की हिफाजत करते हैं और इस तरह की बातों को जो है वो आम नहीं करते। फकातिल फी सबीलिल्लाह, बस अल्लाह के रास्ते में लड़ो। यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अल्लाह के रास्ते में लड़िए। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका व हर्रिदिल मुमिनीन, तुम अपनी जात के सिवा किसी और के जिम्मेदार नहीं हो। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, आप अपनी जात के अलावा किसी और के जिम्मेदार नहीं है। वह हर्र दिल मोमिनीन, और मोमिनीन को भी जो है वो तहरीक दिलाइए। हर्रित इसके मानी होते हैं उनको, उनके अंदर जो है वो तरगीब पैदा करना, उनके अंदर भी जो है वो शौक पैदा करना। तो तरगीब देना, उकसाना, शौक पैदा करना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप खुद कीजिए। अगर फर्ज करें कि आपके साथ कोई भी नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप खुद करें, मोमिनीन को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाइए। और अगर ये कोई भी नहीं उठता, असल्लाहु अन यकुफा बासल्लजीना कफरू, बईद नहीं कि अल्लाह काफरों का जोर जो है वो तोड़ दे। असल्लाहु करीब है कि अल्लाह, अन यकुफा कि वो रोक दे, बासा जंग को, अल्लाजीना वो लोग, कफारू जिन्होंने कुफर किया। तो यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे। अल्लाहु अशद्दु बासं व अशद्दु तनकीला, और अल्लाह जो है अल्लाह का जोर सबसे ज्यादा जबरदस्त है। अशद्दु, अशद्दु के मानी है बहुत सख्त, बासन जंग में जबरदस्त, व अशद्दु और बहुत सख्त है तनकीला सजा में। नून काफ लाम जो है नकल, इसके माने होते हैं सजा के, और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है सजा, बेड़ी, या ये जो जंजीर होती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जंजीर जब किसी को पहनाई जाती है तो उसको जो उसे सजा दी जाती है ना, तो अल्लाह जो है वो सजा देने में बहुत सख्त है। मैं यशफा शफातन हसनतन, जो भलाई की सिफारिश करेगा, यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, तो वो इसमें से हिस्सा पाएगा। तो यहाँ पे जो अच्छी सिफारिश है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक किस्म ये होती है कि शफाए हसाना, दूसरी किस्म जो होती है शफाए सैया, ये दूसरी किस्म है जो बुरी है। हमें यशफा शफातन सैयातन, और जो बुराई की सिफारिश करेगा, यकुल लहू किफ्लुम मिन्हा, तो वो उसमें से हिस्सा पाएगा। मकान अल्लाहु अला कुल्ले शैइन मुकीता, पर अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। अब आप देखें कि यहाँ पे शिफात की या सिफारिश की दो किस्में बताई जा रही हैं, एक अच्छी है और दूसरी बुरी है। और जो अच्छी है उसके लिए नसीब का लफ्ज आया है, और नसीब भी हिस्से को कहते हैं। जो बुरी सिफारिश है उसमें किफल का लफ्ज आया है, और किफल भी जो है वो हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किफल का लफ्ज बिलअमूम जो है वो बुरे हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे कभी कभी अच्छे हिस्से के लिए भी आया है, लेकिन ज्यादातर बुरे हिस्से के लिए आता है। और नसीब का लफ्ज अच्छी सिफारिश के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छी सिफारिश जो है वो करनी चाहिए, बुरी गलत सिफारिश नहीं करनी चाहिए। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि जब कोई साहिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता या आपसे किसी चीज का सवाल किया जाता तो आप सहाबा से फरमाते, तुम सिफारिश करो, इसका तुम्हें सवाब मिलेगा और अल्लाह जो चाहता है अपने नबी की लिसान से जबान से जारी करा देता है या फैसला करा देता है। तो अब आप देख लीजिए कि अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि अच्छी जो सिफारिश है वो की जा सकती है, जैसे किसी का कोई जायज हक है और तो उस हिस्से में जो है वो सिफारिश की जा सकती है। जैसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की एक आजाद करदा कनीज थी, तो उनसे ये सिफारिश आपने की कि इस औरत ने जो कनीज थी इसने अपने शोहर मुगीस से तलाक हासिल कर ली, और जो मुगीस थे वो बहुत परेशान थे अपनी जब उनकी बीवी ने उनसे जो है वो तलाक ले ली, वो चाहते थे कि दोबारा इन्हीं से निकाह करे। तो हजरत बुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर ये आपका हुक्म है तो सर आंखों पर, और अगर सिफारिश है तो मेरी तबीयत इस पर आमादा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म नहीं सिफारिश ही है। तो ये जो लौंडी थी इसका नाम बुरैरा था, और वो जानती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गलत सिफारिश नहीं करते, और जो है वो इसलिए जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरीरा रजी अल्लाह को मजबूर नहीं किया। और वैसे भी जैसे एक यतीम के पैसे किसी ने देने थे और जब वो कोई नहीं दे रहा था तो आप उसके साथ गए और सिफारिश की कि इसके पैसे जो है उसको वापिस करो। तो यानी इसी तरह अगर किसी का कहीं हक छुपा हुआ है या किसी ने किसी का हक मारा हुआ है, और या इसी तरह किसी के रिश्ते नाते में, या अगर आपके कहने पर किसी का कोई मुश्किल जो है वो आसान हो सकती है, कहीं किसी को घर मिल सकता है, किसी के बच्चे का रिश्ता हो सकता है, और जायज सिफारिश यानी जिसमें किसी का हक ना मारा जाए, या किसी को कहीं जॉब मिल सकती है, कोई भी किसी के मसले हल हो सकते हैं, तो वो सिफारिश की जा सकती है, लेकिन नाजायज सिफारिश नहीं करनी चाहिए, गलत सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके पास हजरत उसामा आए थे कि एक हद जो लग रही थी, एक ऊंचे कबीले की औरत ने जब चोरी कर ली थी जिनका जिसका नाम फातिमा था, कि इसको जो है माफ कर दिया जाए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए थे और आपने कहा था कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके हाथ भी काटे जाते। तो सही सिफारिश करनी चाहिए, गलत सिफारिश नहीं करनी चाहिए, और जो भी अच्छी सिफारिश करेगा या बुरी करेगा उसमें से हिस्सा पाएगा। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शय मुकीता, और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। यहाँ पे मुकीता का लफ्ज जो है ये अहम है, और मुकीता जो है इसका रूट है, मुकीता ये लफ्ज यूं आप देखें तो कोई मुश्किल नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो पहले भी ना पढ़ा हो, लेकिन जब ये जरा बदल कर आता है ना तो उस वक्त लोगों को लगता है कि जैसे ये लफ्ज जो है हमने नहीं पढ़ा हुआ। इसका रूट है काफ वो ता, और इसके मानी होते हैं मुकीत के शहीद, हफीज, कुवत, जैसे काफ वो ता कुवत से, कुवत ताकत कुदरत, कुदरत रखने वाला, रोजी देने वाला, हिफाजत करने वाला। तो अब यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि बेशक अल्लाह है जो कि हर चीज पर नजर रखने वाला है। वाइजा हुई तुम बेतहियतिन, और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे, फहयू भी अहसना मिन्हा, तो इसको इससे बेहतर तरीके से जवाब दो, और रुद्दूहा या कम अज कम उसी तरह से, इन अल्लाह का ना अला कुल्ली शैन हसीबा, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। ये जो है ना हुई तुम तहियतिन हयू, इन सब का एक ही रूट है, हा या हय्युन जिंदगी हयात को भी कहते हैं, और तहिया होता है किसी को जिंदगी की दुआ देना। पहले अरब कहते थे हय्या कल्लाह, अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तो सलाम करना, तारुफ, मोहब्बत, फिक्र और अकीदे के लिहाज से अरबों के यहाँ ये लफ्ज मारूफ था। और तहिया जो है जैसे तोहफे के लिए भी आता है, और अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि जब किसी से मिलते तो एक दूसरे को कहते हय्या कल्लाह, अन्नम अल्लाहु बिका आईना, या अनिम सहाबा, अनिम सबाहा या फिर अनिम सबाहा भी कहते, तो अस्सलाम वालेकुम की बजाय वो हया कल्ला कहते थे। इस्लाम ने उनके हया कल्ला को अस्सलाम वालेकुम में तब्दील कर दिया। और इसके मानी क्या है अस्सलाम वालेकुम के, कि हर तकलीफ और रंज मुसीबत से जो है वो दूर रहो। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर इस आयत में सलाम और उसके जवाब के आदाब बताए गए हैं, कि जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो इसको इससे बेहतर तरीके से जवाब दो, या कम अज कम फिर उसी तरह जो है वो जवाब दो। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इस सिलसिले में मैं आपके सामने यह हदीस रख देती हूँ कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहेब आए और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। आपने जवाब में एक कलमा बढ़ाकर कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये जो सलाम था उससे बेहतर जवाब था ना। फिर एक और साहेब आए, उन्होंने सलाम में ये अल्फाज कहे, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह व रहमतुल्लाह। आपने जवाब में एक और कलमा बढ़ाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। फिर एक और साहेब आए, उन्होंने अपने सलाम में तीनों कलमे बढ़ाकर कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपने जवाब में एक कलमा कहा, वो क्या था? व अलैक। अब वो जो सहाबी आए ना, अब इनके दिल में शिकायत पैदा हुई, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पहले जो लोग आए आपने उनके जवाब में कई कलमात दुआ के इरशाद फरमाए, पर मैंने इन सब अलवाज से आपको सलाम किया और आपने सिर्फ व अलैक कहकर खामोशी अख्तियार कर ली। आपने फरमाया, तुमने हमारे लिए कोई कलमा छोड़ा ही नहीं कि हम जवाब में इजाफा करते, तुमने सारे कलमात अपने सलाम में जमा कर लिए और हमने कुरानी तालीम के मुताबिक तुम्हारे सवाल का जवाब फिर तुम्हें तुम्हारे जैसे दिया, वालेक यानी जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही। तो ये जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, इससे क्या बात पता चलती है कि अगर तो कोई अस्सलाम वालेकुम कहेगा तो आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो आप व रहमतुल्लाह बढ़ा कर कहेंगी, और अगर जो है कोई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह दे तो आप उसके साथ जो है वह बरकातु भी मिलाकर कहेंगी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातु। अच्छा, बाज लोग जो है ना उन्होंने एक और भी तरीका किया हुआ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातु व जन्नत हलाल हु व जहन्नम हराम हु, इस तरह की बहुत सी बातें हैं, तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो वही काम करना है जो कि सुन्नत है। अच्छा, दूसरे बाज लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, दिस दैट, तो ये भी मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो हम मुसलमानों का तरीका क्या है कि सलाम जो है वो किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक के मोमिन ना हो, और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मैं तुमको ऐसी चीज बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल कर लो तो तुम्हारे आपस में मोहब्बत कायम हो जाएगी, और ये कि आपस में सलाम को आम करो हर मुसलमान के लिए, खा इससे जान पहचान हो या ना हो। तो ये जो आदीस है इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमें सलाम जो है इसको आम करना चाहिए। और सलाम के मानी होते हैं कि तुझे मेरी जान, यानी तुझे तुम्हारी जान और माल को मेरी तरफ से हिफाजत है। क्योंकि मुसलमान भी कौन होता है जिसके हाथ और जबान से सब मुसलमान महफूज रहे, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानिही व यदिही। और सलाम के अंदर भी आप यही ऐलान करते हैं, जैसे आप किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो उसके मानिए है कि आप डरे नहीं, आप फिक्रमंद ना हो, अब आपको मेरी तरफ से जो है वो पूरी पूरी मेरी तरफ से आपको सलामती मिलेगी, यानी आपकी जान माल इज्जत सब चीजें जो है वो महफूज हैं। तो ये सलाम करना मसनून है, किसी को मिलें, किसी को देखें, किसी को जब रुख्सत करें। और सहाबा का तो ये हाल होता था कि अगर जब वो आपस में मिलकर बैठे हुए होते थे, हत्ता कि बीच में एक सुतून आ जाता, एक ओट या एक दीवार आ जाती, फिर मिलते तो फिर दोबारा जो थे वो सलाम करते। तो सलाम की कसरत जो है वो मोहब्बत पैदा करती है। और बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि जो शख्स सवारी पर हो उसको चाहिए कि पैदल चलने वाले को खुद सलाम करे, और जो चल रहा हो बैठे हुए को सलाम करे, और जो लोग तादाद में थोड़े हों किसी बड़ी जमात पर गुजरे तो उनको चाहिए कि सलाम की इब्तदा करें। और मैं ये वाकया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो का और हजरत उमर रजी अल्लाह नो का सुनाना चाहती हूँ, कि जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो को बताया कि तुम्हारे सलाम में पहल करने की वजह से तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल बनाया गया है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो सिद्दीक थे और नेकियों में आगे बढ़ने वाले। और फिर अगले दिन जब वो हजरत उमर से मिले तो तो हजरत उमर रजी अल्लाह नो जो थे वो सलाम करने में, सलाम में पहल करने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो पर बाजी ले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह नो बड़े हैरान थे कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो आज यानी मुझसे पहले सलाम क्यों नहीं कर सके और मैंने उनसे पहले कर लिया। वो बड़े खुश थे। तो इस पर जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो ने कहा कि जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि अबू बकर जन्नत में तेरे लिए महल है कि तू सलाम में पहल करता है, इस वजह से तो मैंने सोचा कि मेरे भाई उमर का भी जन्नत में महल बनना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है वो तुम्हें सलाम में पहल करने दी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये है एक मुसलमान भाई की दूसरे भाई मुसलमान भाई से मोहब्बत। और असल मोहब्बत क्या है कि जन्नत जो है वो मिले, रब की रजा मिले, और जो है वो हम खुद मुसलमान हों, सलाम को फैलाएं। और सलाम ना करना ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत है। और बाज लोग जो है ना देख कर नजरअंदाज कर देते हैं, पास से गुजर जाते हैं और ऐसे जैसे कि अजनबी होते हैं और सलाम नहीं करते। और बाज लोग अपनी बड़ाई और शान समझते हैं कि बाकी लोग ही बस उनको जो है ना सलाम करें और खुद वो सलाम नहीं करते। तो सलाम करना ये आजी और मोहब्बत की अलामत है, ये मुसलमान होने की पहचान है, और एक दाई के लिए जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हुस्ने इखलाक को अपनाए और दूसरों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पेश आए, सलाम करें। इन अल्लाह का ना अला कुल्ले शैन हसीबा, और अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अब अल्लाह जो है इस बात का फैसला करेगा कि जो है वो किसने सलाम नहीं किया, किसने मुंह फेरा, और कौन जो है वो जिसने सलाम को छोड़कर जो है वो मगरिब के तौर तरीके जो है वो इख्तियार कर लिए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, आज के पूरे सबक का निचोड़ वो अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू ला यजमअन्नकुम इला यौमिल कियामा, और वो अल्लाह जरूर तुमको उस कयामत के दिन जमा करेगा। ला रैब फी, जिसके आने में कोई शक नहीं। वमन अस्दक मिन अल्लाह हदीसा, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। तो आप देख लीजिए कि पूरी बात का निचोड़ जो पिछले 2-3 रुकुओं से चला आ रहा है एक ही बात पर है कि लोगों खुदा एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरी, कयामत का दिन आकर रहेगा। दुनिया की जिंदगी में अगर कोई शख्स जिस तरीके पर चाहे चलता रहे और जो चाहे करता रहे, लेकिन भागकर जाएगा कहाँ? सबको एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और जब वो हाजिर होगा तो अपने अमाल के नताइज देखेगा। और अइनमा तकूनू युद्रिककुमुल मौतु वलो कुंतुम फी बुरूजि मुशय्यदा, मन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। तो सूरत निसा की आयत नंबर 87 पर हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए, अपने जाहिर में, अपने बातिन में, अपनी गुफ्तगू में, अपने अमलों में, सोचों में, हर चीज में जो है हमें इस्लाम जो है उसको इख्तियार करने वाला बनाए। अल्लाह मुझसे और आपसे राजी हो जाए, हमें सोहबते सवाले अता करे, हमारी जबान को सच्चाई अता करे, और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन पर अल्लाह जो है वो इनाम करता है, और वो बेहतरीन रफाकत है और बड़े खुशकिस्मत है जिनको वो मैसर आ जाए। और अल्लाह करे कि सोबते सवाले मुझे, मेरे शोहर को, आपको, आपके शोहर को, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, और हम सब मुसलमानों को सोबते सवाले मिले। और आज के इस जमाने में और आज की इस दुनिया में यहाँ पे डॉलर भी बहुत है, गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं, अच्छे दोस्त, नेक दोस्त, सोबते सवाले का मिलना जो है ये बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह करे कि मुझे और आपको ये ठंडी हवाएं, ये बर्फानी पौधे, ये बर्फों के पहाड़, जहां पे ईमान बर्फ बन जाता है, बर्फ की बर्फ बनकर पिघल जाता है, तो अल्लाह हमारे ईमान को पहाड़ों से मजबूत कर दे और हम सबको सोबते साले अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।